ओम शांति। हम सभी के बीच में आदरणीय गीता बहन जी पधारे हैं, सभी एक हाथ की ताली से उनका अभिवादन करेंगे। आज का विषय बहुत ही सुंदर है, जिसका हम अभ्यास करते हैं लेकिन कई बार सफल होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। एकाग्रता से एक रस स्थिति, यही तो बनाना चाहते हैं ना हम लोग, और इसीलिए योग भट्टी करने के लिए आए हैं। तो गीता बहन जी का मैं पहले परिचय दे देना चाहूंगी। नाम तो आप सभी ने सुना, परंतु जैसा उनका नाम है जीवन भी वैसा ही है। गीता में लिखा है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमने उनके जीवन से देखा है, उनकी ये मान्यता है, कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो। और दूसरा, गीता का जो उपदेश है, दुख सुख मान अपमान निंदा हानि लाभ, इन सब में समान स्थिति, जिसको स्थित प्रज्ञ स्थिति कहा गया है, वो उनकी हम अनुभव करते हैं। आपने 1969 में बहुत छोटी आयु में, सिर्फ 14 वर्ष की कोमल आयु में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आप संपर्क में आए। आपके लौकिक पिताजी डीडीओ थे, जिला विकास अधिकारी, और आप लौकिक में पढ़ाई में भी अति मेधावी छात्रा रही हैं। आपने गुजरात बोर्ड, साउथ गुजरात बोर्ड से मैट्रिक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, परंतु आध्यात्मिकता के प्रति आपकी इतनी गहरी रुचि थी, आपने आगे ना पढ़ करके बाबा के यज्ञ में मानवता की सेवार्थ अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। 1972 में आपने बोर्ड की परीक्षा प्राप्त की थी। गुजरात के सूरत, भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद आदि स्थानों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए अपने भावनगर सब जोन इंचार्ज तरीके 14 वर्ष अपनी सेवाएं दी। 1993 से आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के नवनिर्मित ज्ञान सरोवर एकेडमी में रिसेप्शन और आवास निवास विभाग एवं इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में 17 वर्षों तक आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। आप राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत बिजनेस और इंडस्ट्रीज विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। आप विश्वविद्यालय के नियमित राजयोगी विद्यार्थी भाई बहनों, ब्रह्मा कुमारी टीचर्स बहनों के सघन प्रशिक्षण के भी प्रभावी शिक्षिका हैं। विंग्स के कार्यक्रमों के निमित्त अनेक विषयों पर आपने व्याख्यान दिए हैं और देते रहते हैं, जिससे नारी जागृति, आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, इनर वर्ल्ड एंड आर्ट ऑफ बैलेंस, हार्मनी इन रिलेशनशिप, अनेक विषयों पर आपने बहुत सुंदर वक्तव्य दिए हैं। 1985 में सोमनाथ से दिल्ली तक चलने वाली भारत युवा एकता यात्रा में पद यात्रा थी, उसका आपने नेतृत्व किया और न सिर्फ भारत में लेकिन इस ज्ञान की सुवास फैलाने के लिए आपने अनेक देशों में भी भ्रमण किया है। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा को अपने बीच में पाकर हम सभी स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं। आज के विषय पर हम सभी को क्लास कराएंगे आदरणीय गीता बहन जी।
ओम शांति। शांति वन में भी गुजरात के भाई बहने आए हैं और यहाँ भी मैं देखती हूँ जामनगर और सूरत के भाई बहने आए। आप सबका हार्दिक स्वागत है। गुजरात तो मधुबन का दूसरा कमरा है, इसलिए सीजन पूरा होते ही भाई बहने आ जाते हैं और आने के लिए भी अनेक साधन मिलते हैं, इसलिए गुजरात को ही पहले आमंत्रित किया जाता है। सेवा में भी आते ही रहते हैं और खास मधुबन में तो सभी भाई बहने आने के लिए उत्सुक होते हैं। तो आप सबको भी शायद ये पहला ही मौका मिला है ना? पिछले साल तो बठियां हुई नहीं, पूरा प्रोग्राम कैंसल हो गया क्योंकि भंडारा बन रहा था, लाइट हाउस बन रहा था। तो इस वर्ष फिर से योग तपस्या भट्टी शुरू हुई है और पहला ही मौका किसको मिला है? गुजरात को, जिसके लिए बाबा ने कहा है कि गुजर गई जिसकी रात, वो है गुजरात। तो आप सभी को, क्योंकि गुजरात का सात्विक भोजन है, गुजरात के भाई बहनों का सात्विक जीवन है, ये दो विशेषताएं गुजरात की अभी तक भी रही हैं। इसलिए जैसे ही संगम युग में आप सभी ने प्रवेश किया तो बाबा का ज्ञान बहुत जल्दी ही बुद्धि में बैठ गया और सभी प्रांतों में लोग मांसाहारी बन गए हैं, शराब भी पीते हैं क्योंकि वहां छुट्टी है। यहां तो हमारी गवर्नमेंट ने गांधी जी को फॉलो किया है, इसलिए कई यहां भी शराब पीने आते हैं गुजरात के भाई बहने और वहां भी छिप छिप के उनको मिलता रहता है। परंतु ये बहुत अच्छा है कि खुले आम नहीं मिल रहा है, इसलिए काफी लोग इससे बचे हुए हैं। हमारी भक्ति भी अभी तक भी सतो प्रधान है, राम कृष्ण गणेश हनुमान इन देवी देवताओं की ही हम पूजा करते हैं। शिव जी को भी पूजते हैं, तो भक्ति भी अभी तक सात्विक है। तो सात्विक भक्ति, सात्विक आहार और सात्विक जीवन पद्धति बाबा के ज्ञान में हम सबको जल्दी ले आते हैं। गुजरात में 21 वर्ष हम रहे, सेवाएं की, सूरत, भरूच, बड़ोड़ा, अहमदाबाद 7 वर्ष वहां बिताए और 14 वर्ष भावनगर में रहे, फिर सीधा हेडक्वार्टर में आ गए और 1 साल पांडव भवन में रहे और हमें फिर ज्ञान सरोवर की जिम्मेवारी मिल गई। दादी मनोहर इंदिरा जी के साथ 10 साल हम रहे और उनके साथ सेवा संभालने में मददगार रहे और अब पिछले 14 वर्षों से शांति वन की बेहद सेवा में लगे हैं। वहां भी दादी रतन मोहिनी के पड़ोस में ही हम रहते हैं, तो दादी रतन मोहिनी जी ने हमें कुमारियों की ट्रेनिंग की जवाबदारी दी, वो भी हम संभाल रहे हैं। इस प्रकार से सदा बाबा ने मुझे आगे ही बढ़ाया, कदम कदम पर बेहद की सेवा में हम लग गए और मधुबन की सेवा में लगना माना दादियों के संग और बड़े भाई बहनों के संग सेवा करना। तो ये भी एक बहुत अच्छा मौका मुझे मिला और मधुबन का वातावरण, पर्टिकुलर पांडव भवन का जो वायुमंडल है, ये बाबा मम्मा और दादियों की तपस्या भूमि है, कर्म भूमि है। बाबा का कमरा, बाबा का स्तंभ, बाबा की झोपड़ी और हिस्ट्री हॉल, जिसमें योग करने का आप सबको लाभ मिलता है। यहाँ से नजदीक नक्की लेक है, वहां भी राउंड लगाने आप जाते हैं। नक्की लेक को भी काफी हरा भरा बनाने वाले और जो पांडव भवन के पीछे रोज गार्डन है, वो भी हमारे भाई हरीश भाई ने इसको बहुत अच्छा श्रृंगार किया है। तो अब नक्की लेक का रास्ता भी बहुत अच्छा बन गया है। बाबा की पहाड़ी पर भी आप जाएंगे, आपको ले जाया जाएगा या पहले भी गए होंगे। तो इस प्रकार से इस वरदानी भूमि, परिवर्तन भूमि पर तपस्या करने का आप सबको बहुत अच्छा मौका मिला है। उसके लिए सोनल बहन को और सुषमा बहन जी को बहुत बहुत अभिनंदन आप करेंगे और आप सबकी भट्टी शिलू बहन जी संभाल रही हैं और गीता बहन इसके कोऑर्डिनेशन के लिए यहाँ आई हुई है। तो टोटल आपको साउथ गुजरात की बहनें और सौराष्ट्र की गुजराती बहनों का बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। भट्टी का मेन अमरेला थीम भी शिलू बहन जी ने रखा है की बेहद की वैराग्य वृत्ति अंतिम पुरुषार्थ। बहुत अच्छा थीम उन्होंने बनाया है, क्योंकि ज्ञान सत्य जब मिलता है तो हमें विवेक आ जाता है, दिव्य बुद्धि हमें प्राप्त होती है, ताकि हम राइट रॉन्ग को परख सकते हैं। जो रॉन्ग है इससे वैराग्य आता है, और जो राइट है उससे हमारी आसक्ति बढ़ने लगती है। रॉन्ग के प्रति वैराग्य वृत्ति हमारे अंदर उत्पन्न होती है, जिसके कारण हमारे में शक्ति आती है कि हम अच्छी तरह से जो गलत बातें हैं उनको परख लें और अपने जीवन से उसका त्याग कर दें। बाबा का ज्ञान सभी आत्माओं के लिए है, कुमारियों के लिए भी है और गृहस्थियों के लिए भी है। घर गृहस्थ में रहते हुए आप सभी विषय वासना का त्याग करते हैं। कमल पुष्प समान पवित्र जीवन बनाते हैं। दुनिया में ऐसा सच्चा वैराग्य किसी को नहीं है। कमल फूल समान पवित्र जीवन किसी का नहीं है। वो तो समझते हैं कि ये गृहस्थ धर्म है, घर बार छोड़ने वाले ही पवित्र रह सकते हैं, ऐसा वो मानते हैं। इसलिए हठ दमन का योग करते हैं और अपने को घर से दूर आश्रम में रहकर वो लोग पवित्रता का जीवन जीते हैं। गृहस्थ का संन्यास किया है, विषय वासना का दिल से त्याग नहीं किया है। उनके पत्नी बच्चे भी दुखी होते हैं, उनकी भी आह उनको मिलती है। भल आश्रमों में रहकर, अब तो जंगल भी इतने नहीं रहे, वे भी शहरों में आकर आश्रम बना करके रहते हैं, और उसके अंदर जो पांडित्य है, विद्वत्ता है, उसका अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है। इसलिए अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को भी डराते रहते हैं, उनको भी श्राप देते रहते हैं। अगर वे उनका नहीं मानते हैं तो वे उनको श्रापित करते हैं। तो उन भक्तों से, शिष्यों को भी हठ दमन से अपना बना के रखते हैं तो उनको श्राप मिलता है, और उसी श्राप के डर से वे उनके भक्त बने रहते हैं, उनके शिष्य बने रहते हैं। परंतु बाबा की विधि अलग है। बाबा सत्य ज्ञान देकर, सच्ची समझ देकर और दिव्य बुद्धि देकर हमारे में वैराग्य, देहत का वैराग्य उत्पन्न करते हैं। और जब बेहद का वैराग्य आता है तो फिर हमारा दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। सबको बेहद का वैराग्य आया है, हाथ ऊपर करो। जो पक्के वैरागी हैं, सच्चे त्यागी हैं, वो अपना हाथ ऊपर करें। बहुत अच्छा। जब वैराग्य आता है तो त्याग सहज हो जाता है। हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हमारे विद्यालय की नींव भी त्याग, तपस्या और सेवा पर बनी हुई है। दादियों ने भी बरसों तक हम सबको ये त्याग, तपस्या और सेवा की ही शिक्षा दी है। अब हमारी सब दादियां तो एडवांस पार्टी में चली गई, जो एक बची हुई थी वो भी 8 अप्रैल को चली गई। उनके यादगार स्तंभ बने हैं। रतन मोहिनी दादी जी का भी स्तंभ बन रहा है। ये यादगार स्थान इसलिए बनाए हैं ताकि जिन्होंने दादियों को नहीं देखा है, पालना नहीं पाई है, वो भी उस स्थान पर जाकर वहाँ जो उनकी विशेषताएं, उनकी शिक्षाएं लिखी है वो पढ़ सके और अभ्यास कर सके। यहाँ तो प्यारे बाबा का ही यादगार स्थान बने हुए हैं। उस समय बाबा स्वयं थे और इतने ज्ञानी थे, इतने वैरागी और त्यागी थे कि बाबा ने मम्मा का यादगार बनाने नहीं दिया। हाँ, तो मम्मा का यादगार नहीं बना हुआ है। बाकी सब हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दादियों के बने हुए हैं। जिन्होंने दादियों की पालना नहीं पाई है वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, कुछ कुछ बाद में आए हुए भाई बहने हैं। अब कोई अफसोस नहीं करना है। इनका ही दादियों की पालना से ही पले हुए तैयार हुई हमारी बड़ी दीदियां और बड़े दादाओं की भी हमें पालना मिल रही है। मधुबन इसलिए ही प्रतिवर्ष आते हैं ना, ताकि यहाँ यादगार स्थान देख के बड़ी दीदियां और बड़े दादाओं, उनकी पालना पाकर हम अपने आप को ज्ञान की गहराई में ले जाएं, योग के गहराई में ले जाए। उनके लिखी हुई किताबें भी पढ़ते हैं और बहुत अच्छे उनके अनुभवों के लेख भी ज्ञानामृत में आते हैं, वो भी आप सब पढ़ते होंगे। तो अब मेरा टॉपिक है एकाग्रता से एक रस स्थिति। हम सब अपनी स्थिति को, अपनी आत्मिक स्थिति को एक रस बनाना चाहते हैं। हम हिलना नहीं चाहते हैं, डगमग होना नहीं चाहते हैं, अपना मूड चेंज नहीं करना चाहते। मुरली में भी बाबा कहते हैं कि अचल, अडोल, स्थिरियम, माना एक रस स्थिति हमें बनानी है। एक रस स्थिति माना हमेशा एक रस आगे बढ़ते जाना। बाबा हमें समय अनुसार कहते हैं कि हमारी स्थिति चलने की नहीं होनी चाहिए, दौड़ने की नहीं होनी चाहिए, परंतु सदा उड़ते रहना है। हम स्वयं भी उड़ते रहे और औरों को भी उड़ाते रहे। तो बाबा साकार मुरलियों के द्वारा 33 वर्ष तक स्वयं ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के साथ रहते हुए बहुत अच्छा मंथन करके और अपने अनुभवों को ऐड करके बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं। साकार मुरली में भी आपने सुना है, समझा है कि स्वयं बाबा ने भी हमें अचल अडोल बनने की, अपनी स्थिति एक रस स्थिर बनाने की बातें कही हुई है। चारों ही सब्जेक्ट पर बाबा मुरली में हमें समझाते हैं, पर बाबा ने जो भी मुरलियां चलाई हैं, अभी हम सब वो ही मुरलियां सुन रहे हैं। बाबा ने कोई प्राइवेट ट्यूशन नहीं दिया है, दादियों को अलग से पढ़ाया नहीं, लेकिन आज तक जो बाबा के बच्चे बने हैं वो सब यही मुरली सुन रहे। 5 वर्षों की मुरलियां जो बाबा ने मम्मा के से लेकर 68 तक की मुरलियां, क्योंकि 69 18 जनवरी तो बाबा अव्यक्त हो गए और 21 जनवरी से बाबा की अव्यक्त पालना शुरू हो गई। बाबा और बाबा का अव्यक्त रूप दोनों ही दादी गुलजार में प्रवेश होकर उस तन का आधार लेकर बाबा गुलजार दादी की आत्मा को वतन में सुला देते थे। इसलिए दादी को बाबा क्या मुरली चला के गए वो दादी को पता नहीं। दादी कॉटेज में जाकर वो अव्यक्त वाणी पढ़ती थी। शिव बाबा और अव्यक्त ब्रह्मा बाबा जिनकी पालना हम सब ने 49 वर्ष ऑलमोस्ट 50 वर्ष उसकी पालना हमें मिली, तो जिन्होंने अव्यक्त पालना ली है वो हाथ ऊपर करे। बहुत सारे भाई बहन, बहुत अच्छा। 21 जनवरी 69 में बाबा अव्यक्त हुए और 31 दिसंबर 2017 तक बाबा की अव्यक्त वाणियां चली। अब 8 वर्षों से 17 के बाद 25 माना, 8 वर्षों से अब वो ही अव्यक्त वाणी रिविजन भी हर संडे होती है और हर बाबा के टर्न में पहले उसी जोन के लिए चली हुई मुरली रिवाइज करते हैं, तो ये भी आप सबको पालना मिल रही है। तो ज्ञान की गहराई से अगर आप में वैराग्य वृत्ति है तो उसके लिए एकाग्रता जरूरी है और तभी आपकी एक रस स्थिति बनती जाएगी। जो बाबा के बच्चे लास्ट में आए हैं उनको भी बाबा ने वरदान दिया है कि लास्ट सो फर्स्ट और फर्स्ट जा सकते हैं। अगर आप अपने संकल्पों को या अपने समय को कहीं भी वेस्ट नहीं करें तो मौका है। ये है एकाग्रता। बस एक बाबा का हमारे जीवन में अग्रता क्रम में स्थान हो। हमने जन्म जन्मांतर देह के संबंधों से, देह के संस्कारों से और दैहिक दुनिया और पदार्थों से बहुत दुख पाया है। अब आपने उनको भी परख लिया होगा कि देह के मित्र संबंधी कोई सच्चे मित्र संबंधी नहीं है, क्योंकि जब आपने पवित्र जीवन जीने के लिए ज्ञान में आते ही उनको कहा तो उनको क्या रेस्पॉन्स उनके तरफ से मिला। हाँ, बांधेली माताएं भी होंगी इसमें, कईयों ने उनके द्वारा बहुत सीतम सहन किए, बांधेले भाई भी होंगे, तो आप सबका अनुभव है कि ये अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं परंतु हमारी इच्छाओं का कोई उनके मन में स्थान नहीं है। कुमारियां पवित्र रहना चाहती हैं, कुमार पवित्र रहना चाहते हैं। कुमार कुमारियां हाथ ऊपर करें। अच्छा, बहुत अच्छा है। जो अकेले अधर कुमार ज्ञान में चलते हैं, माताएं चलती हैं, अधर कुमारियां चलती है, वो हाथ ऊपर करें और अधर कुमार भाई। तो इन सबको भी उनके साथियों के तरफ से सहयोग नहीं मिला होगा। आपने अपनी दृढ़ता से, हिम्मत से सफलता पाई होगी। कुमार कुमारियों ने भी अपने को सफल किया। तो ये है परखना। बिना सत्य ज्ञान के हम इन देह के संबंधियों को परख नहीं सकते हैं। जब से बाबा का सत्य ज्ञान मिला, आप सबकी बुद्धि में बैठ गया ना। हमें कोई प्रश्न नहीं हुआ, हमें कोई नियम मर्यादाएं मुश्किल नहीं लगी। यही परख है कि हम सतयुगी आत्माएं हैं, वो ही दैवी घराने की आत्माएं हैं। इसलिए हमारी बुद्धि में सत्य ज्ञान, नियम मर्यादाएं सहज बैठ गई और हम बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे बन गए। है ना निश्चय सबको? हाँ, तभी तो बहने आप सबको यहाँ लेकर के आई हैं। निश्चय होने के कारण हम पढ़ाई और पुरुषार्थ अच्छी रीति करते हैं। जो रोज ज्ञान मुरली सुनते हैं वो हाथ ऊपर करें। वाह, बहुत अच्छा। तो ये निश्चय का प्रमाण है कि आप पढ़ाई भी अच्छी रीति करते हैं और पुरुषार्थ भी अच्छी रीति करते हैं, तपस्या अच्छी रीति करते हैं। अब उस तपस्या में एकाग्रता लाने के लिए हमें पूरा मन लगाना है, सभी नियम मर्यादाओं का पालन करना है। हमारे मूल नियम कौन से हैं? योगी के आधार स्तंभ क्या बताए हैं? ब्रह्मचर्य का पालन, अन्न शुद्धि, सत्संग माना रोज, ज्ञान योग की पढ़ाई करना और फिर दैवी गुणों की धारणा करना, ये हमारा फर्ज है। यथार्थ ज्ञान समझने का यही आधार है। और ज्ञान योग धारणा और सेवा, ये हमारे चार सब्जेक्ट हैं। चारों सब्जेक्ट में आप अच्छी उन्नति कर रहे होंगे। सिर्फ ज्ञान अच्छा लगे ऐसा नहीं, सिर्फ योग करें ऐसा भी नहीं। हमें ज्ञान और योग से अपने में दिव्य गुणों को धारण करना है। हमारा ही पुरुषार्थ हो कि ज्ञान की समझ को दिव्य गुणों में हम परिवर्तन करें। देखो, जब बच्चे छोटे होते हैं तो जो उनको खाना मिलता है, भाग मिलता है, खेलने के जो फटाके मिलते हैं, वो खुद ही सब कुछ यूज करेगा। छोटे बच्चे और किसी को हिस्सा नहीं देते हैं, पर वो ही बच्चे जब बड़े होते हैं, युवा बनते हैं और अपनी जिम्मेवारी अपने भाई बहनों के प्रति समझने लगते हैं, तो फिर वो उनको भी, अपने छोटे भाई बहनों को भी हिस्सा देते हैं। तो ये है समझ को जिम्मेवारी के गुण में, त्याग के गुण में परिवर्तित करना। बाबा तो हमें रोज मीठे बच्चे कहते हैं, वो मिठास हमने अपने में कहाँ तक धारण की है, अपना कड़वापन हमने कहाँ तक छोड़ा है। ये मौका है मधुबन के शांत वातावरण में, जब आप योग करते हैं तो स्वदर्शन करिए, स्वयं को चेकिंग करिए कि हमने श्री कृष्ण जैसी, जिसके मधुरता का कितना अच्छा गायन है। अगर आपने सुना है कि हसीतम मधुरम खलितम मधुरम मधुराधिपति मधुरम मधुरम, उनका हंसना खेलना खाना बातचीत करना औरों से व्यवहार करना, सब कुछ उनका मधुर था, इसलिए उनको कहते हैं मधुराधिपति मधुरम मधुरम। मधुरता का अधिपति, जिसका संपूर्ण व्यक्तित्व मधुर है, श्री लक्ष्मी नारायण को देखते ही प्यार होता है। बाबा देखो हिस्ट्री हॉल में अपने सामने ही लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलेट रखा है। बाबा को उनको देखकर खुद का लक्ष्य याद आता था कि मैं भी ऐसा बन रहा हूँ, मैं भी अब ये बूढ़ा शरीर छोड़ के मिचनू कृष्ण बनूंगा। तो बाबा को अपना लक्ष्य दिखाई देता था। तो आप भी इस भूमि पर आए हैं, यहाँ के शांत पवित्र नेचुरल योग के वातावरण में तपस्या करने आए हैं, यहाँ आप अपना स्वदर्शन करिए, स्वचेकिंग करिए कि हम श्री कृष्ण जैसे, श्री लक्ष्मी नारायण जैसे कहाँ तक ऐसे बने हैं। यहाँ भी देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र है, श्री कृष्ण का भी चित्र है, बाबा मम्मा का भी चित्र है, दादियों के भी चित्र है। उनको देखते हुए स्वयं का चेकिंग करिए कि बाबा मम्मा के बाद भी दादियों ने कितनी जिम्मेवारी संभाली। बड़ी दादी ने भारत देश में 8000 सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र और गीता पाठशालाएं खोली, और दादी जानकी ने विदेश में जाकर अपनी 140 देशों में अपनेपन का अनुभव करा के बाबा को पूरे देशों में प्रत्यक्ष किया, बाबा का संदेश दिया और सेंटर्स भी खोले। गुलजार दादी जी ने देश और विदेश के बीके भाई बहनों को पालना देकर कितना उसको सशक्तिकरण किया, उन्हों का निश्चय बढ़ाया। और अभी जो दादी रतन मोहिनी जी थे, दादी गुलजार के बाद वो ही हेड बने, उनके जीवन को भी आप जानते होंगे कि वो बस अपना समर्पित भाई बहनों का सेंटर्स के सर्टिफिकेशन का कारोबार संभालने में ही इंटरेस्ट रहा और पूरा ज्ञान योग का अध्ययन मनन वो सदा करते थे। उनके क्लासेस इतने डेप्थ वाले होते थे कि कहीं तो समझ भी नहीं पाते थे। हम भाई बहनों को बहुत अच्छे लगते थे। अभी रोज उनसे पालना ली हुई भाई बहने अपना अनुभव सुनाते हैं। तो दादी जी ने कभी भी न पर चिंतन किया, न तेरी मेरी की। यहाँ हिस्ट्री हॉल के पीछे मनोहर दादी जी का, रतन मोहिनी दादी जी के कितने छोटे छोटे रूम हैं। जब ज्ञान सरोवर बना, दादी कॉटेज बनाई गई, तो एक बार बड़ी दादी सब दादियों को लेकर आई और उनको दादी, हर दादी की एक एक कॉटेज बनाई थी जिसमें उनका मुलाकात करने का रूम बनाया था, दादियों के रहने का कमरा था, उनके ड्रेसिंग का रूम था और बहुत ही बाथरूम भी बहुत अच्छे थे। तो उस समय दादियों ने देख के बोला, दादी इतने बड़े हम क्या करेंगे, इतनी बड़ी कॉटेज इसको क्या करेंगे, आप छोटी छोटी बनाते थे। परंतु वो तो निर्वैर भाई जी और अपने जीतू भाई जो है सूरत के, उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया। और छाया भाई, ये गुजरात के ही भाइयों ने इसका ज्ञान सरोवर का नक्शा भी बनाया, आर्किटेक्चर वर्क किया और उन्होंने ही कंस्ट्रक्शन किया निर्वेद भाई के बताने पर। तो देखो दादियां सदा त्याग में ही रही, अब जाके नीचे सब दीदियों के और दादाओं की बड़ी बड़ी कॉटेजेस बनी हैं। तो ये त्याग अगर आप सब में भी आएगा और जिगरी तपस्या आप करेंगे, ज्ञान की गहराई को आप समझेंगे, तो आप सबको भी एकाग्रता आएगी। हमारी कोई हठ दमन वाली एकाग्रता नहीं है, कोई आसन प्राणायाम की बात नहीं है। उससे पहले ऋषि पतंजलि ने यम नियम सिखाए और समय अनुसार लोगों ने यम नियम मिटा दिए और आसन प्राणायाम करने लगे। आज के सन्यासियों ने खुद भी आसन प्राणायाम अपनी तंदुरुस्ती के लिए किए, क्योंकि जंगल में या आश्रमों में उस समय तो कोई उनके पांव दबाने वाले या उनके कमर दबाने वाले कोई नहीं थे ना। तो उन्होंने जंगलों में रहकर, पहाड़ों में रहकर स्वयं आसन प्राणायाम सीखे और उन्होंने औरों को भी सिखाए। अभी जो बाबा रामदेव है, उन्होंने आसन प्राणायाम को पूरे भारत में प्रसिद्ध किया और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसको 21 जून प्रसिद्ध किया। उस समय काफी देशों ने सपोर्ट किया, तो योग के नाम पर वो लोग आसन प्राणायाम ही करते रहे। परंतु जब यूनो ने अनुभव किया, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज भी यूनो की सदस्य है और वहां हमें परमानेंट एक ऑफिस भी मिली हुई है, तो यूनो के हम एनजीओ के रूप में एफिलिएटेड है और उनके हर प्रोजेक्ट में हम मददगार बनते हैं। उसमें आध्यात्मिकता और योग का एडिशन करते हैं, इसलिए यूनो को भी समझ में आया 21 दिसंबर मेडिटेशन डे, वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में अब मनाने लगे हैं। तो देखो धीरे धीरे हमारा ज्ञान भी योग भी प्रत्यक्ष होने लगा है। यहाँ जो मधुबन में मेहमान आते हैं, अभी उनके विदेश के मेहमानों के कॉल ऑफ टाइम, पीस ऑफ माइंड के दो प्रोग्राम फेब्रुआरी में होते हैं और उस समय उन्हों की एन्युअल मीटिंग, जिसमें हर देश के, विदेश के हर सेंटर के और जो खंड है उनके रीजियोनल कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर और सेंटर कोऑर्डिनेटर, एनसीसी, आरसीसी के मीटिंग होती है जिसमें विदेशों के विभिन्न संस्कृति, धर्म, भाषा और मान्यता के लोग जो कोऑर्डिनेटर हमारे बने हैं, जिन्होंने ब्राह्मण कल्चर को अपनाया है, वे सब आकर 400 की संख्या में आते हैं और मनमोहिनी के ग्लोबल ऑडिटोरियम में उनकी मीटिंग्स होती हैं। इस वर्ष भी उन्होंने अपने प्लान बनाए और बाकी अप्रैल से लेकर सितंबर तक भारत के विभिन्न प्रोफेशन के मेहमान आकर के ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं। जब ये मेहमान आते हैं, ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं, तो उनको भी फील होता है, महसूस होता है कि हमने तो नाहक भक्ति में टाइम वेस्ट किया। कथा कीर्तन वाले तो हमें ऐसा समझाते ही नहीं हैं। हमारे बीके भाई बहने अच्छी तरह ज्ञान योग के लेसन्स भी हम समझाते हैं और उन्हों को तब महसूस होता है कि ऐसा सत्य ज्ञान तो किसी ने नहीं समझाया, हमने टाइम वेस्ट किया। तो देखिए, आप सबको, आप भाग्यशाली हैं जो आपको सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, सच्चा योग आप सबने सीखा है। आप खुद को बिंदी आत्मा समझकर बिंदी परमात्मा पिता को याद करते हैं और जो बीती बातें हैं उनको प्रैक्टिकल में बिंदी लगा देते हैं। ये तीन बिंदी का जितना अभ्यास आप करेंगे और ड्रामा में जो हमारे पांच साकार में स्वरूप है, हमारा अनादि स्वरूप कौन सा है? ज्योति बिंदु आत्म स्वरूप है। आदि स्वरूप देवता का है, मध्य स्वरूप पूज्य स्वरूप है। बाबा के अवतरण पर संगम युग का हमारा स्वरूप सच्चा ब्राह्मण स्वरूप है और ब्राह्मण से हमें देव फरिश्ता बन के वापस घर जाना है। अगर साकार स्वरूप आपको अनुकूल आता है तो दिनचर्या में हर घंटे एक मिनट जब आप योग करते हैं तो एक के बाद एक पांच स्वरूप का अभ्यास करिए। और जो हम ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास करते हैं, दिनचर्या में पांच बार 7 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे, 5:30 बजे और 7:30 शाम को, तो ये ट्रैफिक कंट्रोल के समय आप तीन बिंदु स्वरूप का अभ्यास करो। कर सकते हैं ना सभी? तो आप सभी जल्दी अपने को एकाग्र कर सकेंगे और आपकी दिनचर्या जो बाबा ने बताई है वो ही अगर आपकी दिनचर्या आप अपने लौकिक में रहते हुए भी फॉलो करेंगे, एक तो अमृत वेला योग आप जरूर करिए। अमृत वेला अच्छी तरह करने के लिए आप रात्रि 9 बजे 10 बजे टाइम से सो जाइए और शाम को 7:30 से 8 के बीच में आप लक्ष्य रखें हल्का भोजन करें, ताकि आपको पेट भारी ना हो जाए, गैस का प्रॉब्लम ना हो, माथा भारी ना हो जाए, इसके लिए हल्का भोजन करिए। जो मधुबन में आप देखते हैं ना, एकदम हल्का भोजन है। दिन में भल आपको जो खाना है भारी भोजन करिए और नाश्ता भी हल्का करिए। कहा जाता है कि नाश्ता जितना खाना है खा लीजिए, राजा की तरह करिए। दिन का भोजन सामान्य मनुष्य जैसा करिए, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद छाछ, इतना तो गुजरातियों को चाहिए ना। हाँ, भोजन ऐसा करिए। और रात का भोजन यहाँ आप देखते हैं खिचड़ी खाते हैं, सब्जी रोटी खाते हैं। ये तो बाद में गुजरातियों का आना शुरू हुआ, तब से कढ़ी बनना शुरू हुआ। हाँ, सुरती भाई बहनों को तो कढ़ी चाहिए ना। हाँ, तो ये सब पीछे की एडिशन है। तो इस प्रकार से अगर आप अमृत वेला योग सफल करना चाहते हैं, तो बाबा भी कहते हैं यहाँ काफी छत बनी हुई है, एकांत के वातावरण में आप अमृत वेला योग करिए। भोजन करते समय भी बाबा की याद में रहे, बातचीत न करें। हाँ, गुजरातियों को शांति पसंद है। हाँ, कि बातें पसंद है, शांति में रहिए। हाँ, बाबा की याद में रोज की मुरली को याद करते हुए, विचार सागर मंथन करते हुए आप भोजन करेंगे, बाबा को भोग लगाकर खाएंगे, तो आपका संध्या योग भी आप रोज करें। शायद आपकी भट्टी की दिनचर्या में भी 5 से 6 योग हैं, जहां भी बैठ के करना है, 4 धाम में से वहां बैठ के करे, बाकी यहाँ संगठन में करने से हमें 1-2 का बल मिलता है। तो संध्या योग करिए। और चौथा, रात्रि सोने से पहले बाबा ने आजकल की ही साकार मुरली में भी कहा था कि आधा घंटा योग करके बाबा को अपना चार्ट बता करके बाबा की याद में शांति से बाबा की गोद में सो जाइए। बाबा की गोद माना बाबा की याद में सोना है। तो ऐसी अगर आपकी दिनचर्या रहेगी और कुछ भी आप पर चिंतन, संसार चिंतन, व्यर्थ चिंतन, तेरी मेरी नहीं करेंगे, पूरी ज्ञान युक्त दिनचर्या रखेंगे, तो आप अपने को जल्दी एकाग्र कर सकेंगे और स्थिति भी आपकी एक रस बनती जाएगी। कैसी भी परिस्थिति आवे, कैसी भी समस्या आवे, परंतु हमेशा बाबा हमारा साथी है। उस समय बाबा को बुलाइए, प्यार से उनको याद करिए, उनको बताइए, तो बाबा का साथ हमें सहयोग मिलेगा और हम अपने लक्ष्य में एकाग्र होने में, एक रस स्थिति बनाने में सफल हो जाएंगे। सफल होना है ना सबको, लक्ष्य तो पक्का है ना सबका, हाँ, कि धीरे धीरे डाइल्यूट हो गया है, हाँ, ढीला तो नहीं हो गया है ना। सबका लक्ष्य मजबूत रहे कि हमें ब्रह्मा बाप जैसा संपन्न भी बनना है और संपूर्ण भी बनना है। आज तो उस विषय पर क्लास नहीं है मेरा, एकाग्रता और एक रस, जिसको लाइट हाउस माइट हाउस बनना कहते हैं, वो लाइट माइट वाला योग माना हमारा एकाग्रता वाला योग, एक रस स्थिति वाला योग। तो जब भी आप योग में बैठें, दिल से बैठें, एकाग्रता से बैठें, ऐसे नहीं आपके आसपास वाले उठ के जा रहे हैं तो हम भी चले जाएं, ऐसा नहीं सोचना है। आपका पूरा ध्यान अपनी तपस्या में रहे, बाबा में रहे। योग और तपस्या में यही अंतर है कि जो गहरी समझ के साथ और दृढ़ता के साथ हम योग अभ्यास करते हैं, उनको तपस्या कहा जाता है। अंतर्मुखी बनकर दृढ़ता के साथ, पूरी एकाग्रता की शक्ति के साथ तपस्या भट्टी आप सबको भी करनी है। तो आप कब से बैठे हैं, हाँ, तो थोड़ा खड़े हो जाए। अपने हाथ पांव स्ट्रेच करे, हाथ ऊपर करिए, छत से हाथ लगाइए, हाँ, ऐसे अंगुलियों पर एड़ी ऊंची करे, हाँ, हाथ ऊपर खींचे, बहुत अच्छे। अपने पांव भी स्ट्रेच करिए, हाँ, पांव को ऊपर नीचे करिए, हाँ, कदम ताल करिए, हाँ, कुमार कुमारियां करेंगे तो आपको देख के माताएं और भाई भी करेंगे, हाँ, अच्छा। कमर ठीक कर लीजिए, पीछे थोड़ा झुकिए, आगे झुकिए, कमर पर हाथ रख के कमर को स्ट्रेच करिए। बहुत ज्यादा झुकना नहीं, नहीं तो गिर जाएंगे, हाँ, हाँ, थोड़ा थोड़ा, और दोनों साइड झुकिए कमर से, हाँ, ये छोटू भी कर रहा है बहुत अच्छा। अब मैं आपको खड़े खड़े ही योग अभ्यास कराऊंगी, और आपको शरीर से जैसे मैं कहूं ऐसे घूमना है, तो शरीर से घूमते हुए मन से अभ्यास करना है। पहला अभ्यास स्वयं के मन और बुद्धि को भ्रुकुटी के बीच में स्वयं के आत्मस्वरूप में एकाग्र कर दीजिए। ये भ्रुकुटी सरफेस पॉइंट है मस्तक का। वास्तव में आत्मा मस्तक के बीच अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच रहती है। पर भ्रुकुटी उसकी यादगार है जहां हम आत्मस्मृति का तिलक करते हैं, अपने ज्योति बिंदु आत्मस्मृति में स्थित हो जाए। मैं शरीर से अलग अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति हूं। शरीर तो मिट्टी है, प्रकृति के पांच तत्वों से बना है, जड़ है। शरीर पंच कर्मेंद्रियों का बना हुआ पुतला है। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार का चैतन्य समूह हूँ। मैं इस दुनिया में वर्ल्ड ड्रामा का एक्टर बनकर वैरायटी पार्ट बजाने आई हूँ। मेरा असली घर इस दुनिया से दूर शांति धाम है। वहां हम सभी आत्माएं एक परम पिता के बच्चे एक ही परम धाम के निवासी हैं। मेरा निज स्वरूप सत्य है, पवित्र है, शांत स्वरूप है। मैं प्रेम सुख आनंद और शक्तियों से भरपूर हूं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस देह से दुनिया से अलग हूँ, मैं सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। अब राइट साइड घूम जाइए, परम ज्योति बिंदु शिव बाबा की प्रिय संतान सत्य ज्ञानी डायरेक्ट परमात्मा योगी पवित्र संतान मुझे ज्योति बिंदु आत्मा के पिता परमात्मा भी निराकार विदेही बिंदु आत्मा परम आत्मा जिसको प्यार से परम पिता परम शिक्षक परम सतगुरु शिव बाबा कहते हैं। हम मन ही मन बोलेंगे बाबा शिव बाबा मेरे प्यारे बाबा मीठे बाबा कल्याणकारी शिव बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। आपने मुझे अपना बनाकर पवित्र और योगी बनाया है। अब आपकी याद से आत्मा में जो एलॉय मिक्स हो गई है, विकर्मों की खाद पड़ गई है, आपकी याद से वो भस्म कर देनी है। मुझे शुद्ध सोना श्रेष्ठ आत्मा संपूर्ण निर्विकारी पूर्ण सत्व प्रधान आत्मा बनना है। मैं बिंदु हूँ, बिंदु बाबा की संतान और राइट साइड घूम जाइए। बिंदु आत्मा को, बिंदु शिव बाबा की याद में रहते हुए जन्म जन्मांतर के और इस जन्म के ज्ञान से पहले तक जो कुछ मन वचन कर्म से तन मन धन से पाप किए हैं, व्यर्थ किया है, उस बीती को बिंदु लगाना है। अब मुझे परख आ गई है, मैंने झूठ विकारों के वश विकर्म चोरी शैतानी इधर की उधर बातें उधर की इधर बातें करके जो घर फिटाए हैं, संबंध जिनके बिगाड़े हैं, आपसी विश्वास को तोड़ा है, अब उन विकर्मों को मैं समझ सकती हूँ। मुझे इन सभी व्यर्थ और पाप कर्मों की बीती पर बिंदु लगाना है। अब तक पुरुषार्थी ब्राह्मण जीवन में भी अगर कोई व्यर्थ या पाप कर्म किए हैं, छोटे मोटे जो पाप किए हैं, जिसका बोझा भी मेरे सिर पर है, आज इस भट्टी में आकर पांडव भवन में रहकर दृढ़ता से बिंदु लगाना है। बीती को बीती करो, उसको याद करके भी अपने आप को फिर दाग नहीं लगाना है मुझे। मुझे पांडव भवन में जितना भी दिन में रहूं, मुझे रोज का रोज जो खजाने बाबा के तरफ से मुझे मिले हैं, ज्ञान गुण शक्ति सेवा से दो दुआएं कमाई हैं, ब्राह्मण परिवार से जो मुझे खुशी मिली है और इस अंतिम जन्म में इस भौतिक दुनिया में जो धन साधन जमीन जायदाद है उसका यथार्थ उपयोग करते सबको सुख देना है, सुख लेना है, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। मुझे हरेक ब्राह्मणों में और लौकिक मित्र संबंधियों में हिम्मत उमंग उत्साह भरना है। इन सब खजानों को सफल करना है। संगम का समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संगम के अंत पर तो हम आ गए हैं। जो थोड़ा समय बचा है इस समय में समय संकल्प श्वास बाबा की याद में बाबा को मददगार बन उनकी सेवा में साथ देकर संगम में ही स्थूल और सूक्ष्म अलौकिक खजानों को मुझे सफल करना है और सफलता पानी है। राइट साइड घूम जाए, अब अपनी अंतिम लक्ष्य पर आत्मभिमानी बनना है, अशरीरी बनना है, अव्यक्त कर्मातीत बनना है। इस मंजिल पर पहुंच जाना है। मुझे ब्रह्मा बाबा जैसा अव्यक्त वतनवासी संपूर्ण कर्मातीत फरिश बन जाना है। ज्ञान गुण और शक्तियों से, कला विशेषताओं से, मुझे ब्रह्मा बाबा की तरह अंतिम वैराग्य की स्थिति से संपन्न भरपूर बन जाना है। जब संपन्न भरपूर बनेंगे तो संपूर्ण बन जाएंगे, राइट साइड घूम जाइए और बाबा को देखते हुए ब्रह्मा बाबा और मम्मा को देखते हुए अपने संकल्प को, लक्ष्य को दृढ़ करिए। अपने पुरुषार्थ को तीव्र करिए। जब गाड़ी तीव्र गति से चलानी है तो हम हाईवे को चुनते हैं, एक्सप्रेस वे को चुनते हैं। तो हमारे आध्यात्मिक पुरुषार्थ का अगर हमें तीव्र करना है तो बाबा मम्मा और हमारी बड़ी दीदियों दादियों को फॉलो करिए। अनन्य ब्रदर्स सिस्टर्स को फॉलो करिए। हम आपस में एक दो को ना देखें, बाबा मम्मा और बड़ी दादियां बड़े दादाएं उनको अव्यक्त रूप में इमर्ज करके उनके सामने दृढ़ संकल्प करिए। बैठ जाए। ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा, फिर हम योग समाप्त करें।
बहुत बहुत थैंक्स गीताबेन, आपने यज्ञ की सारी कारोबार से भी अवगत कराया और साथ साथ कैसे हम अपनी दिनचर्या पर यदि पूरा अटेंशन रखते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल पर भी अटेंशन रखते हैं, तो अपनी स्थिति को कैसे हम एक रस बना सकते हैं, उसके साथ साथ आपने प्रैक्टिकल वो करवाया। सभी ने इस बात की अनुभूति भी की कि कैसे सब तरफ से हम अपने विचारों को समेट करके जब पॉजिटिव संकल्पों में अपने मन को लगा देते हैं तो कैसे एकाग्रता आती है और उससे हमारी एकरस स्थिति बनती है। एकरस स्थिति अर्थात ऐसा नहीं कि जब हम ज्ञान में चले थे तब से हमारी एकरस स्थिति है, हम तो कभी पीछे हटे ही नहीं, लेकिन एकरस स्थिति अर्थात कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो भी आपने बताया कि इसको ही एकरस स्थिति कहते हैं। बहुत बहुत थैंक्स।